श्रीमद् भागवत कम संस्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक संख्या 10 दिनांक 14 जुलाई 2015 स्पीकर हिज ग्रेस वनमाली प्रभु।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण के इस दसम स्कंद में हम भगवान गिरिराज गोवर्धन गिरधारी जी का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं और इसमें भी इंद्र का वर्णन नंद महाराज द्वारा किया जा रहा है और इंद्रदेव अपना प्रभाव हल्का हल्का सा यहाँ वर्षा के माध्यम से अपना प्रभाव भी दिखा रहे हैं। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो सर्वप्रथम वो भगवान जो कि भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल वांछा कल्पत्रु पर ब्रह्म अकील रसामृत मूर्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड के एकमात्र नायक जो कि दीन बंधु है, दीनानाथ है, दया के सिंधु है, दया के सागर है, दया के मूर्ति है, कृपा के सिंधु जो हर जीव का मंगल सर्व मंगलमय भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी एवं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री गौरनिदाय जी इनके परम अनुकंपा एवं महिती कृपा से आज हम आप उनके छत्र छाया के नीचे उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है सत्संग का हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हैं। तदंतर भगवान के उस महान कृपा जिस माध्यम से जिन महान पुरुष के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इनके चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए इस प्रसंग की ओर हम अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को प्रारंभ करते हैं। कृष्ण रसराज रसिक शेखर वे अपने बाबा नंद महाराज से पूछ रहे हैं, बताओ बताओ क्या है कारण। आप सब बड़ा उत्साह के साथ धैर्य के साथ निश्चय के साथ कार्य कर रहे हो। आप जो कार्य कर रहे हैं इसके पीछे कारण क्या है, इससे क्या फल मिलेगा, ये कैसे करना चाहिए, ये बताइए मुझे ताकि मैं इसे जानकर जानना चाहता हूं। अगर ये सही है तो भविष्य में मुझे भी ऐसा करना होगा जैसे आज आप कर रहे हो, कल हमें जिम्मेवारी लेना होगा। बताओ बताओ। नंद महाराज ज्यादा बताना नहीं चाहते थे, सोचा कि ये बच्चा है, इसे खेल खुदने का समय है। पर कृष्ण का ये हट को देख के, उनका ये बाल हट को देखकर नंद महाराज बहुत प्यार से कृष्ण को बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस प्रकार का यज्ञ करना हम सबके लिए आवश्यक है। यह यज्ञ केवल हम नहीं कर रहे हैं, हमसे पहले बहुत लोगों ने किया है, आज भी हमारे अलावा और लोग भी इस प्रकार के यज्ञ करते हैं। इस प्रकार का यज्ञ जब हम करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, वर्षा हमें मिलता है और वर्षा से अन्न मिलता है, अन्न से हष्ट पुष्ट होते हैं, कार्य करते हैं, उन कार्यों में हम धर्म का कार्य करते हैं। धर्म जब करते हैं तो अर्थ मिलता है और अर्थ मिलता है तो काम पूरा होता है। त्रिवर्ग फल हे तबे कृष्ण थोड़ा डर गए थे, कृष्ण को ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कृष्ण जान गए कि ये ब्रजवासी हमारे प्यारे हैं और बहुत नादान हैं, वे अपने आप को बहुत कम मान रहे हैं। ये ब्रजवासियों का इस कमी का लाभ ये इंद्र ले रहा है। और कृष्ण ये नहीं चाहते थे, कृष्ण और कुछ चाहते थे, कृष्ण और कुछ चाहते थे। एक भक्त थोड़ा विनोद करते हुए कह रहे थे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अंतवत् फलम तेजाम तद भवती अल्पम इदसाम। जो लोग देवी देवता का पूजा करते हैं वो कम बुद्धि वाले हैं, भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता के सातवें अध्याय में, कम बुद्धि वाले हैं। तो कृष्ण को थोड़ा डर लग गया, मेरे ब्रजवासियों को आगे जाके बड़े बड़े पंडित लोग कम बुद्धि वाले कहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का एक डर, विनोद हेतु ऐसा एक भक्त कह रहा था। फिर आगे और डर गए क्योंकि कृष्ण उसी सातवें अध्याय के उस श्लोक में कहते हैं जो देवी देवता का पूजा करते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं और जो मेरा उपासना भक्ति करते हैं सेवा करते हैं प्यार से वो मेरे पास आते हैं। देवान देव यजो यान्ति मद भक्त यान्ति माम अपि। कृष्ण पहले तो डर गए, इन्हें लोग भविष्य में कम बुद्धि वाले कहेंगे, मेरे भक्तों को ब्रजवासियों को कम बुद्धि वाले कहेंगे गीता के आधार से। फिर जो देवी देवताओं का उपासना करते हैं देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं का देवियों का इस प्रकार से उपासना करते हैं वो देवताओं के पास चले जाएंगे। अब देखिए कृष्ण का डर क्या है, वो भक्त कह रहा था ये इंद्र का पूजा पाठ करेंगे तो थोड़ी देर में वो इंद्र के धाम में चले जाएंगे, इंद्र के पास चले जाएंगे, मुझे छोड़कर वो इंद्र के हो जाएंगे। तो कृष्ण थोड़ा सा भयभीत हो गया, अरे ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे भक्त होना चाहिए। और गोवर्धन जो है आगे जाके भगवान चाहते हैं कि गोवर्धन का भी यश हो, गायों का भी यश हो, ये भी कहते हैं। तो देखिए नंद महाराज कुछ चाहते हैं कि इंद्र का पूजा हो और कृष्ण कुछ चाहते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे वही होता है जो कृष्ण चाहते हैं। कहने वाले खूब सुंदर कह गए, आपने भी सुना होगा, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है। पर अच्छा, तो नंद महाराज वो कर रहे थे जो वो चाहते थे, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, ज्यादा करके हम क्या करते हैं जो हम चाहते हैं, पर वो होता वो है जो खुदा चाहते हैं या भगवान चाहते हैं या कृष्ण चाहते हैं। हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, होता वो है जो कृष्ण चाहते हैं। इसलिए अब आज से हम वो करेंगे जो कृष्ण चाहते हैं या खुदा चाहते हैं, तो होगा जो हम चाहते हैं। यानी कि हम अगर वही चाहेंगे जो कृष्ण चाहते हैं तो वही होगा जो हम चाहते हैं। अर्जुन चाहता था कि वो रणभूमि से भाग जाए, भीख मांगे। दूसरे अध्याय के अंत में अर्जुन क्या कहने लगा, मैं अभी भिखारी बनने जा रहा हूं। नहीं, पहले अध्याय के शुरू में, अंत में, मैं भीख मांगने जा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण उनको अच्छा उपदेश देते हैं, आत्मा का, सकाम कर्म योग का, निष्काम कर्म योग का, फिर भक्ति योग का बहुत सुंदर करते हैं। भक्ति योग का, शुद्ध भक्तों का लक्षण का वर्णन करते हैं। तो ये सब सुनकर अब दूसरे अध्याय के अंत में अर्जुन सन्यासी का कपड़ा पहनकर भागने वाला था। अरे, तीसरे अध्याय के शुरू में भगवान उन्हें रोक देते, शुरू में रोक देते हैं। अरे, कहाँ भाग रहे हो? बोला, मैं अभी शुद्ध भक्ति करने जा रहा हूँ, सन्यासी बनने जा रहा हूँ, आप ही भक्ति का बड़ा महिमा गाए हैं। तो बोला, रुक जाओ रुक जाओ, अरे पिछले बार आपने सन्यासी का कपड़ा पहना था, बहुत कष्ट से आपको मैंने बचाया, आप सुभद्रा का हरण कर लिया, वो तो मैं था जो बचा दिया, नहीं तो बलराम जी आपका धुलाई कर लेता था। तो कहा कि आपको समाज में, हाँ, तब तक सन्यासी का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, पहली बार पहना तो गड़बड़ कर लिया, जब तक मन स्वच्छ नहीं होता है। मन स्वच्छ करने के लिए हमें सकाम कर्म करना होगा, और इस कर्मों का वर्णन किया गया यज्ञ के माध्यम से। तो अर्जुन कहते हैं, नहीं, मेरा मन स्वच्छ है। तो कहते हैं कि अगर आपका मन स्वच्छ भी है तो समाज को मार्गदर्शन देने के लिए यद यद आचरति श्रेष्ठस, आप एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो कि आपके देखते देखते लोग धर्म के मार्ग में चलेंगे। तो यज्ञ इत्यादि का वर्णन तीसरे अध्याय में भगवान कर चुके हैं। इन यज्ञों के द्वारा देवी देवता प्रसन्न होते हैं, मनुष्य और देवी देवताओं के बीच में ये चलता रहता है। हम यहाँ यज्ञ करते हैं, देवी देवता ऊपर से सब कुछ बरसा देते हैं, हमको जो भी चाहिए वो देवता देते हैं, यज्ञ के माध्यम से प्रसन्न होते हैं और देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, अर्जुन चाहता था कि भाग जाए, पर अंत में क्या हुआ? जो भगवान चाहते थे वही हुआ। इसी प्रकार से नंद महाराज चाहते थे कि वो इंद्र का पूजा करे, पर भगवान कृष्ण चाहते कि गोवर्धन का पूजा, अंत में क्या होगा? गोवर्धन का पूजा। ये यज्ञ को भगवान रोकना चाहते थे, कारण यह था कि ब्रजवासियों को बताना चाहते थे कि गोवर्धन का महिमा क्या है, गायों का महिमा क्या है, और इंद्र को बताना चाहते थे कि गिरिराज जी का महिमा क्या है, तो इसलिए रोकना चाहते थे। पूछा, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बताइए पिताजी बताइए। तो यहाँ पे इसका फल क्या है, आप बताइए, आप कृपा करके मुझे ये सब बताइए। ये गोवर्धन जी का जो प्रसंग है बहुत ही अद्भुत है। आज भी गोवर्धन में ऐसा गांव है, गोवर्धन के तलट्टी पर ऐसा गांव है, जैसे हमने बताया कि लोग रोज शाम को मिलते हैं और गोवर्धन जी का ही कथा सुनते हैं। पिछले 5000 वर्ष से रोज शाम को वक्ता पूछते हैं कौन सा कथा चाहिए, तो कहता है कि गोवर्धन गिरिराज जी का। और कथा भी वो सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। और वक्ता भी जब कथा कहता है तो पूरा भाव विभोर होकर कथा कहता है। गिरिराज जी उनका प्राण है, गिरिराज जी उनका जीवन है, सुनते हैं ध्यान से, तल्लीन हो जाते हैं उस कथा में। गिरिराज जी से उनका इतना लगाव है, भगवान से इतना लगाव है, 5000 वर्ष से रोज शाम यही चल रहा है, सुपर हिट हो गया आज के से बहुत। जैसे कथा जब सुनते हैं या कहते हैं तो एक सुंदर प्रसंग का वर्णन आता है, थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। ये वास्तव में एक बार की घटना है, शिव पार्वती भ्रमण कर रहे थे और चार कुमार, आप जानते हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, वे सत्संग कर रहे थे और इस सत्संग में ऐसा हो रहा था कि तीन भाई बैठते हैं और चौथा कथा करते हैं, वक्ता बनते हैं, और दूसरे दिन चौथा बैठ जाता है, पहला आके वक्ता बन जाता है, बाकी तीन सुनते हैं भारी बारी से, और कथा में इतना तल्लीन हो गए हैं कि उन्हें पता नहीं इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और शिव पार्वती का वहां से गमन जाना था, शिव जी भगवान के नाम जप में बड़े तल्लीन थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हरे कृष्ण करते करते जा रहे थे, तल्लीन थे। यहाँ चार कुमार कथा में तल्लीन थे, पार्वती थोड़ा उनका भाव थोड़ा चंचल जैसा था, तो शिवजी को देख के, शिवजी चल रहे हैं, यहाँ चार कुमारों को देख के वो कथा कर रहे हैं। उन्हें यह विचार था कि ये चार कुमार अब मेरे पति जो कि महादेव हैं, जो द्वादश महाजन में एक महाजन है, बहुत बड़े संत हैं, महाभक्त हैं, वैष्णव हैं, उनको प्रणाम करेंगे। ये तो चार कुमार है, छोटे छोटे लड़के हैं, जरूर शिव जी को प्रणाम करेंगे, पर ये भक्तगण इतने तल्लीन थे कि कुछ नहीं किया। पार्वती को कुछ अच्छा नहीं लगा, कहा कि इन बालकों को अगर मैं सबक नहीं सिखाऊंगी तो वो बिगड़ जाएंगे, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा और भक्ति में आगे बढ़ेंगे नहीं, इनको अभी मैं सबक सिखाऊंगी। तो इनको ऊंट बना दिया, चार ऊंट वहां पे, तक्षण चार ऊंट वहां पे हो गए, तो चार ऊंट वहां पे खड़े थे। तो शिव जी चल रहे थे, शिव जी को कुछ पता नहीं, ये सब जपा करके आ रहे, आते आते जब आया तो पार्वती और अक्के बक्के और आश्चर्यचकित हो गए। तो एक ऊंट वक्ता बन गया और तीन ऊंट श्रवण कर रहे हैं। अब पार्वती कांपने लगी और अपने अपने पति देव से कहा कि भगवान थोड़ा देखिए, मैं तीन दिन पहला यहाँ से गुजर रही थी, चार छोटे बालक आपस में चर्चा कर रहे थे, आपको प्रणाम नहीं किया तो मैंने उनको श्रापित कर दिया। तो शिवजी चौंक गए, किनको? यही चार। तब शिवजी को सब पता लग गया। फिर मैं आज देख रही हूँ कि ये चार के चार वैसे ही हैं, ऊंट तो ऊंट पर तीन ऊंट बैठा हुआ है, कथा सुन रहा है और एक ऊंट कथा कर रहा है, इनमें कोई फर्क नहीं, हम आ रहे जा रहे हैं, इनका उनको उसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं, ज्ञान नहीं है। तब शिव जी ने कहा, देवी आपने ये क्या कर दिया, ये आपके जेठ लगते हैं। तो पार्वती और भी कांपने लगी, क्या वैष्णव अपराध ने बहुत बड़ा आपने अपराध कर लिया, तुरंत इस श्राप को आप कम कर दो, निकाल दो। तो तुरंत पार्वती ने उन चारों का वो मेरे बड़े भाई लगते हैं, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र लगते हैं, उनके आने के बाद मेरा प्रकट्य हुआ या मैं अरा विवाह हुआ है, आपके जेठ लगते हैं। तो शर्मा के फिर से, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये चार कुमार भगवान की कथा में इतना तल्लीन है, इतना तल्लीन है कि उन्हें कुछ पता नहीं। इसी प्रकार के गोवर्धन का इस लीला का श्रवण करते करते कुछ गोवर्धन वासी जो है ऐसा तल्लीन है कि वो कह रहे हैं कि हमें केवल गोवर्धन जी का ही लीला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसे कहते हैं एक निष्ठ हो जाना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमें सब कुछ त्याग कर एक निष्ठ हो जाना चाहिए। बहुत सुंदर इस प्रकार से इस कथा में अब हम सुन रहे हैं कि नंद महाराज कहते हैं कि हे कृष्ण, हे बड़े प्यार से कहते हैं, इस प्रकार के यज्ञ से तत्शेषेन, इस प्रकार के यज्ञ से जो बच जाता है, इसका जो जूटन है, प्रसन्न होकर इंद्र जो है जो देते हैं हमें, इससे हमारा जीवन चलता है। इंद्र जब प्रसन्न हो जाते हैं इस प्रकार का यज्ञ करने से, तब वो वर्षा इत्यादि देते हैं, इस वर्षा से हमें हमारा जीवन चलता है, उपर जीवन थी, हमारा जीवन चलता है। ऐसा कैसा? तो कहते हैं कि जीवन इस प्रकार का यज्ञ से केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते हैं। इंद्र जैसे देवी देवताओं का जब यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं, तो जीवन में हमें हम इस प्रकार के धर्म के कार्य से त्रिवर्ग फल को प्राप्त करते हैं। वो क्या है त्रिवर्ग फल? प्राय लोग जीते हैं केवल इंद्र तृप्ति करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ माना जाता है। तो यहाँ पे नंद महाराज कहते हैं ये त्रिवर्ग ये क्या है, धर्म अर्थ और काम, इसे भी हम पूरा करते हैं। केवल हम इंद्र तृप्ति के कार्य में नहीं लग रहे हैं, हम केवल इंद्र तृप्ति के कार्य में नहीं लग रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं। और इस धर्म के माध्यम से क्या होता है, अर्थ मिलता है। वो अर्थ कैसे मिलेगा? जब वर्षा होगी तो अनाज उगेगा, अनाज उगेगा तो हम उसे बाजार में देंगे, बाजार में वो देने से हमें बदले में कपड़ा रोटी इत्यादि, हमारे जो कामना है वो पूरा होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष पूरा हो जाएगा इस प्रकार के कार्य से। इसलिए हम इंद्र का इस प्रकार से उपासना कर रहे हैं। सच पूछो तो चाणक्य पंडित अपना पहला सूत्र में बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते हैं कि धर्म ही सुख का मूल है। जीवन में अगर कोई सुखी है, वो संपत्ति को प्राप्त किया है या अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर रहा है, तो इसके पीछे धर्म ही मूल है। कोई अगर धनवान है, बलवान है, ज्ञानवान है, रूपवान है, यह सब धर्म के माध्यम से ही मिलता है। ये बड़ा सरल सी बात है, छोटी सी बात है। धर्म के बिना कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, ना किया था ना ऐसा कर पाएंगे, ना वर्तमान में ऐसा हो रहा है। आज के नौजवान युवकों को ये छोटी सी बात पता नहीं लगता है। वो क्या देखते हैं, लोगों के पास धन है, संपत्ति है, पर वो समझ नहीं पाते हैं कि ये संपत्ति इनके पास आया है या तो इस वर्तमान जीवन में या पुरातन अनेक जन्मों में उन्होंने धर्म किया है, तब जाके आज उनको सुख संपत्ति मिला है। वो इतना भ्रमित हो जाता है कली के प्रभाव से, और कली भी इतना चालाक है, वो जानता है कि फलाना व्यक्ति को इतना धन मिलना है, फलाना व्यक्ति को इतना धन मिलना है, तो कली क्या चाल खेलती है, उस व्यक्ति का बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। मान लो किसी व्यक्ति को 2 करोड़ रुपया मिलना है, तो कली क्या करता है, उस व्यक्ति का, वो कली जानता है कि उसको कि 2 करोड़ रुपया मिलना है आज शाम को, पर आज सुबह उसका बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। वो क्या कर देता है, उसका बुद्धि को भ्रष्ट करके कहता है कि आज थोड़ा सा आप स्मगलिंग करो, तो वो स्मगलिंग करके आता है, तो शाम को उसको वैसे भी मिलना था 2 करोड़, तो मिल जाता है। अब लोगों को क्या लगता है, जितने भी कम बुद्धि वाले होते हैं, जो शास्त्र को नहीं जानते हैं, ये चाणक्य पंडित का ये सूत्र को नहीं जानते हैं, धर्म सुख का मूल है, वो क्या कहते हैं, अरे देखो हम इतने दिनों से रोज सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, हर गणेश चतुर्थी में हम नारियल तोड़ते हैं, ये सब किया, पर हमें कुछ मिला नहीं। ये व्यक्ति थोड़ा सा गलत काम किया, अधर्म का काम किया, तो तुरंत उसके 2 करोड़ मिला। तो देख सकते हैं कि ये लोग आजकल इतने कम बुद्धि वाले हैं कि कली के चाल को वो पहचान नहीं पाते हैं। अधर्म से कभी किसी को सुख मिला नहीं, ना मिलेगा, ना वर्तमान में मिल रहा है, पर लोग कली के चाल में ऐसे फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि अधर्म के माध्यम से ये व्यक्ति बड़ा हो गया है। आज सच का जमाना नहीं है, सुनते हैं हम सब, हम जब प्रचार करने जाते हैं बोलते स्वामी जी ये सच का जमाना नहीं है, यहाँ उल्टा काम जो करता है वही आगे बढ़ता है, देखो ना फलाना व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, हमारे आंखों के सामने घटा ये घटना है। कहते हैं देखिए कोई कितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वो राक्षस क्यों ना हो, कलनायक क्यों ना हो, अगर उसके पास सुख संपत्ति है तो जरूर उन्होंने धर्म का काम किया है। हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड के वो शासक बने, वो कैसे बने, वो धर्म का कार्य किया है। 10,000 देवताओं के वर्ष तपस्या किए, कुछ खाए पिए नहीं, सोए भी नहीं, तो 10,000 देवताओं का वर्ष यानी कि 10,000 वर्ष भी पकड़ लो तो कितने सारे एकादशी गया होगा, निर्जल करके किया होगा एकादशी, फिर कितने सारे जन्माष्टमी गया होगा और बीच बीच में पुरुषोत्तम मास भी चला गया होगा। तो ये निर्जल करते करते अनजाने में इतने सारा उसको धर्म का पालन किया अनजाने में। तो धर्म किए बगैर किसी को सुख संपत्ति मिला नहीं है ना मिलेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा गलत काम कर रहा है, उस गलत काम से उसको संपत्ति नहीं मिल रहा है ना सुख मिल रहा है, वो गलत काम का सजा तो बाद में उनको मिलेगा, पर आज उनके पास जो सुख संपत्ति है वो उनका पूर्व जन्म का या इस जन्म का किया गया धर्म का कार्य है। तो ये धर्म हम तब करेंगे, धर्म करने के लिए थोड़ा शक्ति होना चाहिए, बल होना चाहिए, वो तब मिलेगा जब हम कुछ अन्न इत्यादि खाएंगे, और ये अन्न हमें तब मिलेगा जब कृष्ण इंद्र वर्षा करेंगे, और इंद्र कब वर्षा करेंगे जब हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे। बहुत अच्छा सिस्टम है, ये भगवान ने बनाया ये सिस्टम। तो धर्म करेंगे जब हमारे पास शक्ति होगा, अगर हमारे पेट में कुछ खाना नहीं है शक्ति नहीं होगा तो कहते ना भूखा पेट भजन ना होए गोपाला, ले ले तेरा कंठी माला और झोला। तो अगर कोई भूखा है, क्यों भूखा है, अन्न नहीं है, अन्न क्यों नहीं है, क्योंकि वर्षा नहीं है, वर्षा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहा है। तो यज्ञ तब संभव, यज्ञ करेंगे वर्षा होगा, वर्षा होगा अन्न होगा, अन्न होगा तो खा पी के धर्म करेंगे, धर्म करेंगे तो अर्थ मिलेगा, अर्थ मिलेगा तो हम अपने इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से नंद महाराज कह रहे हैं कि हे कृष्ण इंद्र का यज्ञ करके ही हमें बहुत कुछ मिला, और इतना ही नहीं इंद्र का यज्ञ करके ही आप जैसे पुत्र हमें अपने जीवन में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से नंद महाराज इंद्र के यज्ञ में तल्लीन थे, उत्साह निश्चय धैर्य के साथ, पर कृष्ण देख लिया ये उत्साह निश्चय धैर्य के साथ तो कर रहे हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतोवृत्ति इसमें नहीं है, ये कोई महाजन के द्वारा स्थापित या कोई प्रामाणिक भक्त के द्वारा स्थापित नहीं किया है, इसलिए भगवान इसे खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि गोवर्धन का पूजा हो। और इस प्रकार से गोवर्धन जी का पूजा का महिमा 5,000 वर्ष से आज भी चल रहा है। आज तो पुरुषोत्तम मास है का त्रयोदशी है, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है। गोवर्धन जी का परिक्रमा अगर हम करने जाएंगे तो चलने मुश्किल होगा। हमने 3 साल पहले जब गोवर्धन परिक्रमा किए, हमने स्वयं अपने आंखों से देखा कि इतने सारे लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, पति पत्नी और बच्चे सब परिवार सहित दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, और जो संत लोग दंडवत के तलट परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन के तलटी में ही अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे संतों को देखे हैं जो गोवर्धन जी के 1008 दंडवत परिक्रमा यानी कि एक स्थान पर 1008 बार दंडवत करते हैं, फिर अगले दिन दूसरा 1008, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा समर्पित हो रहे हैं गोवर्धन जी के प्रति। क्यों? क्योंकि ये गोवर्धन जी साक्षात भगवान है और ऐसे भगवान का सेवा होना चाहिए, ना कि कोई देवी देवता का। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि नंद महाराज कृष्ण का सेवा करें, पर कृष्ण कह नहीं सकता है कि मेरा पूजा करो, मेरा पूजा करो, ये भी ठीक नहीं लगता है। कोई सज्जन व्यक्ति अपने बारे में कहता नहीं है, है ना? कोई सज्जन व्यक्ति अपने बारे में कहता नहीं जब तक सामने वाले पूछे नहीं। तो कोई सज्जन अपना बड़ा बने का, मैं फलाना, मेरा नाम है, मैं ये काम करता हूं, जब सामने वाले पूछे तो ही सज्जन कहता है। देखिए कृष्ण जो है चौथे अध्याय तक वो अपने बारे में कुछ नहीं कहे। दूसरे अध्याय के शुरू में आत्मा के बारे में, फिर सकाम कर्म के बारे में, तीसरे अध्याय में अपने बारे में वो कहे ही नहीं। और अर्जुन ने जब प्रश्न किया, ये कैसा हो सकता है कि आपका जन्म आपने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया है, आप तो सूर्य देव को कैसे ज्ञान दे सकते हो? जहां तक मेरा बुद्धि चल रहा है, मैं तो ये समझता हूं कि सूर्य देव बहुत सीनियर है और आप सूर्य देव से जूनियर है। पर जन्म भगवान अपर्व जन्म विवस्वान, वो तो सीनियर है और आप जूनियर है, और कैसे हो गया कि आप उनको जाके ये ज्ञान दे दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब कृष्ण बहुत मुस्कुराते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं कि हे परम तप अर्जुन, आप ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हो ताकि आप लोगों को मेरे बारे में, यानी कि भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में जानकारी देना चाहते हो, और अगर आप ये प्रश्न ना पूछते तो मैं अपने बारे में नहीं कहता। तब कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत विधानम धर्मे सिद्धात्म नाम सजामि हम। अपने बारे में पहली बार भगवद गीता में भगवान बताते हैं। इसी प्रकार से भगवान ये नहीं कह सकते मेरा पूजा करो, मेरा पूजा करो, पर वो कहते हैं इनडायरेक्टली गोवर्धन जी का पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन जी भक्त भी है और भगवान भी है। तो यह है इस लीला के पीछे बहुत सुंदर रहस्य, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग। अब हम सुनेंगे कैसे नंद महाराज को कृष्ण बतलाएंगे कि गोवर्धन का हमको इंद्र का पूजा नहीं करना चाहिए, और क्या क्या तर्क देते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा तर्क देते हैं, वो सब हमें सुनना है। इसलिए हमें इस कथा में आना है और इसका पूरा लाभ लेना है, क्योंकि हम गिरधारी जी के भक्त हैं, तो ये गिरिराज जी का प्रसंग को बड़े ध्यान से हमें सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरिराज गोवर्धन जी की, श्रील प्रभुपाद की जय।